व्यासपीठ जानते हैं आप लोग, पाद है उनके सिर्फ चरण का जो है एक छोटा सा मंदिर। जैसे अगर आप वहां जाओगे रंगनाथ जाओगे तो वहां मंदिर के सामने ये पादपीठ है। तो दक्षिण भारत में बहुत सारे आप देखेंगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 108 जगह जहां जहां चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया तो वहां उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पादपीठों का स्थापना किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती हम देखते हैं कि उन्होंने भारत में, तभी भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था उस समय, तो उस समय उन्होंने लगभग भारत में उस समय ट्रेन भी चलती थी पुरानी तूफान एक्सप्रेस, तो उन्होंने काफी भारत में जो है प्रचार किया है। तो ऐसे वो निरंतर जो है प्रचार में रहते थे। फिर आगे उन्होंने जो है सज्जन तोषणी जो एक मैगजीन है बंगला में, तो उसका भी उन्होंने जो है छापना आरंभ किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि भगवान के लीलाएं इतने अनंत है कि अगर हम एक सेकंड में भी एक मैगजीन प्रिंट करेंगे, जैसे एक उदाहरण वो देते थे, तो भगवान का जो पूरा जो सृष्टि है उसमें जो भारत है वो एक छोटा सा देश है, तो ये पृथ्वी में इतने सारे देश है और भारत में भी जो है जैसे कलकत्ता एक छोटा सा शहर है, और वहां उस समय लगभग 10-12 पेपर छपते थे बंगाल में। तो कहते थे कि अगर ये ब्रह्मांड में एक छोटा सा एक पृथ्वी पर एक भारत में एक जगह एक छोटा सा बंगाल है, वहां इतने न्यूज़पेपर निकल सकते हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड में जहां भगवान की लीलाएं हो रही है गोलोक वृंदावन वगैरह, अगर उनका ये किया जाए पूरा, अगर भगवान की प्रतिदिन की लीलाओं को इकट्ठा करके अगर छापने जाएंगे तो एक सेकंड में एक न्यूज़पेपर जो है हम छाप सकते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि भक्ति यानी कलयुग में जो लोग है यानी लोगों को रुचि नहीं है, भगवान की भक्ति में रुचि नहीं है, तो उन्होंने और भी एक मैगजीन निकाला था जिसका नाम था नादिया प्रकाश। तो आज आपको हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो अमृतवाणी, अमृतवाणी यानी जैसे शास्त्र में उल्लेख आता है प्रतिदिन हम लोग गुरु पूजा गाते हैं, तो उसमें हम लोग गाते हैं गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य। जैसे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कहा करते थे, अरे व्हाट इज द डिफिकल्टी, कौन सी परेशानी है। प्रभुपाद जी कहते थे कि भक्ति का मतलब है जाप करना है, कीर्तन करना है, प्रसाद लेना है, इसमें भी कौन सी यानी कठिनाई है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है उनके बहुत सारे जो अमृतवाणी है उसमें से हम जो प्रमुख है उन्हीं को आप यहां दोहराएंगे आज। तो सबसे पहले उनकी अमृतवाणी में जो सबसे पहले उन्होंने कहा है वो है हमारा जो दिनचर्या चालू होता है, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारा सुबह उठते ही पहला कार्य क्या होना चाहिए, वो कहते हैं कि द फर्स्ट बिजनेस इन द मॉर्निंग, टॉयलेट नहीं जाना, सुबह उठते ही जूता लेके सर में 100 बार मारने का। कितने बार मारने का? हाँ, गिन के, ज्यादा भी मारने से अच्छा है। तो कम से कम आज के दिन तो हमें मारना चाहिए, अगर 365 दिन नहीं मारेंगे तो भी। तो कहते थे अगर मन को अगर अपने वशीभूत यानी अपने काबू में रखना है तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन उठते ही कम से कम 100 बार जूता सर में मारना चाहिए, और फिर सोने से पहले झाड़ू से 100 बार मारना चाहिए। कितने बार? झाड़ू से। वो कहते थे कि इस प्रकार ये मन जो है वो काबू में रह सकता है। तो उन्होंने एक भजन भी बहुत अच्छा भजन लिखा है, दुष्ट मन तुम्ही किशोर वैष्णव। तो हम देखते कि ये मन के लगाव से इस भौतिक जगत में हम लोग जो है अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो उनका ये पहला इंस्ट्रक्शन है, जैसे प्रभुपाद जी ने एक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया था अपने शिष्यों को कि हरेक को प्रतिदिन 16 माला करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये फर्स्ट रेगुलेटरी प्रिंसिपल, प्रभुपाद जी ने कहा था अपने शिष्यों को कि प्रतिदिन उनको नियमित रूप से 16 माला करना चाहिए। तो आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती उस समय भी हम देखते हैं, ये 100 साल पुरानी बात है, वो कहते थे कि अगर हम जो है प्रचार कर रहे अगर लोग भक्त नहीं बनते तो आश्चर्यचकित मत होना, आप प्रचार करते रहना, इस दुनिया में जो है लोगों को भक्त बनाना इतना आसान नहीं है। वो कहते थे अगर लोग भक्त नहीं बनते कोई बड़ी बात नहीं। तो प्रभुपाद जी भी कहते थे अगर हम 1% लोगों को भी अगर भक्त बनाएंगे तो बहुत है, 1%। अगर हम किसी भी शहर में प्रचार कर रहे कहीं वहां की आबादी है समझो 5 लाख, 5 लाख का 1% कितना होता है? कोई नहीं बता सकता 5000। हाँ, तो अगर हमारे पास 5000 भी लोग फॉलोअर्स भी होंगे तो बहुत हो गया। तो इस प्रकार जो है वो बताते थे कि इस दुनिया में लोग जो है अगर भक्ति नहीं करेंगे तो कोई हमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कलयुग का ये है, ये यानी कलयुग का प्रभाव है। फिर आगे वो कहते थे कि ये भौतिक जगत जो है ये एक प्रकार का टॉयलेट है। क्या है? टॉयलेट। जैसे भौतिक जगत में पहले जमाने में लोग क्या करते थे, घर में रसोई बना के, घर में भोजन करके घर के बाहर जाके टॉयलेट करते थे। लेकिन आजकल लोग बाहर खा के आते हैं, घर के अंदर अटैच बाथरूम टॉयलेट में वहां छोड़ देते। लेकिन कुछ भी हो, आजकल लोगों के हवेलियां, कोटरी, घर वगैरह करोड़ों में बनते हैं। कोई कोई लोगों का जो है घर का बाथरूम, आजकल लोग किसी के घर जाते तो दो चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? एक टॉयलेट और एक बाथरूम, वो भी सामने किचन, सॉरी एक टॉयलेट और एक किचन। सामने किचन होता है, इधर टॉयलेट होता है। अभी हाल ही में मैं एक जगह गया था रथ यात्रा करने के लिए, तो वहां एक फ्लैट खुला ही था, अभी कोई वहां नहीं आए थे, तो वहां हमें रहने की जगह दी थी। तो मैंने क्या देखा कि सामने यहाँ किचन है और सामने इधर डोर है। तो कलयुग में हम इतने लोग मेरे ये हो गए, पतित हो गए, बस खाना है और टॉयलेट जाना है, वही जानते हैं। तो लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते थे कि भौतिक जगत क्या है, एक टॉयलेट है। भारत में हम देखते हैं कि लोग टॉयलेट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि सब गंदगी है। तो कहते थे कि अगर एक व्यक्ति टॉयलेट जाता है तो वहां ऑफिस न्यूज़पेपर लेके नहीं जाता है, आजकल जाना पड़ता है क्योंकि लोगों को कब्ज बहुत होता है, कॉन्स्टिपेशन। तो कहते थे कि भौतिक जगत क्या है, एक प्रकार से टॉयलेट के समान है। तो टॉयलेट में अपना काम करके निकल जाने का, कोई भी व्यक्ति टॉयलेट में जाके वहां अपना पूरा संसार नहीं बसाता है, वो अपना कार्य करके निकल जाता है। वो कहते थे कि भौतिक जगत भी जो है एक प्रकार का ये टॉयलेट है, यहां से निकल जाओ। फिर वो कहते थे कि जिसके अंदर शक्ति है, प्राण आशय हेतु प्रचार, जिस व्यक्ति के अंदर ताकत है, शक्ति है, ताकत है ना प्रचार की, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यार देके तार कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो तार यही देश। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती हम देखते हैं कि उन्होंने अपना शरीर स्वयं जो है कलकत्ता में त्याग दिया, प्रचार करते करते उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये नहीं चाहते कि धाम में अपना शरीर छोड़ना चाहिए। तो कहते थे कि ये एक वैष्णव को जितना हो सके उतना अपना शरीर जो है जब तक हमें मौका मिलता है तो प्रचार करते रहना चाहिए। तो कहते थे कि प्राण आचे हेतु प्रचार, जिस व्यक्ति के अंदर प्राण है वही प्रचार कर सकता है। तो हमारे लिए भी प्रभुपाद जी ने काफी सुविधा दी है, तो हम लोग अलग अलग प्रकार से प्रचार कर सकते, किताब वितरण से लेके हरिनाम से लेके बहुत अलग अलग प्रकार के कार्य है, तो हम अलग अलग प्रकार से प्रचार कर सकते हैं। फिर वो आगे कहते थे कि अगर हमें अगर भक्त बनाना है लोगों को, तो हमें अपना लाखों टन में खून जो है बहाना पड़ेगा, बहाने ने अपना खून का पसीना, तो हमें जो है बहुत प्रयास करना पड़ेगा। वो कहते थे कि गैलन्स ऑफ टन जो है हमें खून बहाना पड़ेगा। खून बहाना का मतलब है कि लोगों को कल्टीवेट करने के लिए इतना आसान नहीं, अगर आप देखेंगे कि कलयुग में लोगों को भक्त बनाना इतना आसान नहीं है। वो कहते थे कि इसके लिए हमें बहुत अपना जो है परिश्रम करना पड़ेगा। फिर आगे वो बताते थे कि वैष्णवता, जैसे अभी हम लोग वैष्णव संप्रदाय में है, वो कहते थे कि वैष्णवता का अर्थ है सरलता। सरलता का मतलब है जैसे प्रभुपाद जी इसमें भगवद्गीता में ये लिखते हैं, इसका डेफिनेशन सरलता का अर्थ है कि एक व्यक्ति को अपना अगर दुश्मन भी आ जाए धर्म में, तो उसको जो सच्चाई क्या है उसको बताना चाहिए। एक व्यक्ति को अपने अंदर कुछ अनर्थ कपट नहीं रखना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो बताते थे कि हमें कोई चीज छुपा के रखने की जरूरत नहीं। एक वैष्णव है, वो कहते थे कि उसका जिंदगी क्या है, व्हाइट स्लेट, एक जो है ये होता है फलक, तो उसका जो है लाइफ वो क्लीन होना चाहिए। कहते थे कि वैष्णवता का अर्थ है सरलता। फिर आगे वो कहते थे कि इस दुनिया में कोई चीज की कमी नहीं है। आज भी हम देखते हैं, जैसे अभी मैं हाल ही में काफी जगह ब्रज दर्शन के लिए लेके गया था लोगों को, तो मैं अक्सर ब्रजवासियों को पूछा करता हूं अब की बार फसल कैसी है। तो एक ब्रजवासी मुझे बता रहे थे कि 6 साल के बाद में अब की बार बढ़िया फसल हुई है। तो अभी आप देखेंगे कि इस साल जो है पिछले साल बारिश सिर्फ 20% हुआ था, लेकिन फिर भी जो है जो ये जाड़े में कुछ वर्षा हुई और लोगों की फसल जो है छह साल में अब की बार बढ़िया फसल है, लोग खुश है, सब्जी से लेके सब फसल जो है। अभी हम सोच सकते हैं कि इस दुनिया में भारत में भी हम देखते हैं कि कोई अनाज की कमी नहीं है। तो प्रभुपा जी कहा करते थे कि हमारे नेता लोग बाहर जाते हैं सिर्फ भीख मांगने के लिए, कहते कि भारत भिखारी है। तो पहले जमाने में कहा जाता था कि भारत है जो है एक सोने की चिड़िया है भारत। तो कहते हैं कि 10 में 10 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान, ऐसी स्थिति है। अभी हाल ही में दक्षिण भारत में एक मंदिर है अनंत पद्मनाभ, वहां रेलवे का जो वैगन होता है 400 वैगन का सोना निकला, यानी सिर्फ जो है यानी भगवान के अलग अलग प्रकार के जो ये होते हैं आभूषण, उतना वहां उसको यानी हम लोग गिन नहीं सकते, वहां इतना यानी भगवान का ये है। तो अगर हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि मुसलमानों ने भारत को 800 साल लूटा, अंग्रेजों ने फिर 200 साल लूटा, उसके बाद में हमारे नेता लोगों ने पता नहीं कितना लूटा, फिर भी भारत में कोई चीज की कमी नहीं है। तो कहते थे कि इस दुनिया में सिर्फ कृष्ण भक्ति के अलावा सिर्फ कृष्ण भक्ति की कमी है। किसकी कमी है? हाँ, ओनली स्कैरसिटी, इस दुनिया में सिर्फ कृष्ण भक्ति की कमी है, इसके अलावा इस दुनिया में कोई चीज की कमी नहीं है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि वो कहते थे कि भौतिक जगत में कोई चीज की कमी नहीं कृष्ण भक्ति के अलावा। फिर वो आगे कहते थे कि कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, ऐसे कार्य करो कि ताकि कृष्ण भगवान वो स्वयं आ जाए आपको देखने के लिए। तो अभी आप देखते हैं कि भौतिक जगत में कभी कभी लोग हमें पूछते हैं, अरे आप वृंदावन में रहते कभी आपने कृष्ण को देखा? तो लोग भी कभी कभी थोड़ा देखते हैं, इनसे थोड़ा मजाक उड़ा लेते हैं। तो दुनिया में हमें मालूम होना चाहिए, जैसे एक बार प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर दे रहे थे तो एक व्यक्ति खड़े हो गए, कहने लगे स्वामी जी क्या आप कृष्ण भगवान को देख सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ मैं तो देख रहा हूं भगवान को, लेकिन आप बीच में खड़े हो गए, बैठ जाओ। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो भगवान जो है जैसे हम प्रगति करेंगे उसके अनुसार हमें भगवान अवश्य दर्शन देंगे, जैसे नारद मुनि का जीवन में हम देखते। तो हमें प्रयास करना नहीं चाहिए, भगवान जब ही हमारी भक्ति परिपक्व हो जाएगी, वो कहते थे कि डोंट यानी भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसे कार्य करो स्वयं भगवान प्रेरित होकर आपके पास आ जाए। जैसे अमेरिका का एक सच्ची घटना है, एक कंपनी में एक जो है एक व्यक्ति थे कार्य करते थे, वो 25 साल उनका कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं था कि ड्यूटी पर लेट आ गए या सिक लीव ले लिया, उनका बिल्कुल रिकॉर्ड क्लीन था। तो एक बार वो कंपनी के मालक जो है सबका रिकॉर्ड देख रहे थे, कौन व्यक्ति कैसे कार्य कर रहा है उनके फैक्ट्री में, बहुत सारे लोगों का लिस्ट था। तो उन्होंने देखा, बड़े ताजुब हो गया, एक व्यक्ति ऐसा है कि कभी उसने न तो छुट्टी लिया है, कभी बीमार हुआ है, न तो कोई गलती किया काम में, टाइम टू टाइम आता है। तुरंत उसने अपने मैनेजर को बुलाया, यार मैं इस व्यक्ति को देखना चाहता हूं, चलो किधर है व्यक्ति। तो उसकी इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, वो चल के गए, वो व्यक्ति जहां कार्य कर रहे थे जाके उसको हाथ मिलाया, गले लगाया, कहा कि मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, अगर सब आप जैसे बन जाए। तो आप देखते हैं कि वो व्यक्ति उससे इतने प्रसन्न हो गए। तो कृष्ण भगवान भी जब हम अपनी भक्ति सही ढंग से करेंगे अपना कार्य, तो वो प्रसन्न होके वो खुद आ जाएंगे अपने पास। तो वो ऐसे कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो ताकि भगवान स्वयं आ जाए अपने सेवा को देखकर। तो आगे कहते थे कि दूसरों के अंदर कमी मत देखो। इस दुनिया में हम देखते हैं जब हम किसी के पास उंगली करते हैं तो चार उंगलियां तो अपने पास होती है। तो कहते थे कि दूसरे के अंदर ये मत देखो कौन क्या कर रहा है। वो कहते थे कि कृष्ण भगवान ये नहीं पूछेंगे कि किसने क्या किया, कृष्ण भगवान ये पूछेंगे तुमने क्या किया बताओ। तो इस दुनिया में हम जो है जैसे ग्राम में कथा, दुनिया में कौन क्या कर रहा है उसका ज्यादा हिसाब किताब रखते हैं, अपना खुद का हमें कुछ मालूम नहीं। वो कहते थे कि अपने कमियों को सुधारो, दूसरों की कमी देखने से अच्छा है कि अपने कमियों को सुधारो। आज इस दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों के अंदर बस ये ग्राम में कथा ये चर्चा चलती रहती है, अरे ये इधर इसने ऐसे किया उसने ऐसे किया, इधर ऐसे हो रहा है उधर वैसे हो रहा है, लेकिन अपना खुद का क्या हो रहा है वो हमें मालूम नहीं। फिर आगे वो बताते थे कि इस भौतिक जगत में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, अगर इस दुनिया के अगर सब धर्म ग्रंथ जल जाएंगे, सिर्फ चैतन्य चरितामृत बह जाएगा, फिर भी हम धर्म का प्रचार कर सकते। इस दुनिया में बहुत सारे धर्मों की कोई जरूरी नहीं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो है अलग प्रकार के धर्मों का प्रचार कर रहे हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं। वो कहते थे कि अगर सब धर्म ग्रंथ जल जाए कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। अगर एक सिर्फ चैतन्य चरितामृत रह जाएगा उससे भी हम जो है धर्म का फिर से जो है प्रचार कर सकते हैं। फिर आगे वो कहते थे कि एक व्यक्ति को जो है जो व्यक्ति यानी भक्ति कर रहा है, जिन्होंने दीक्षा ली है, वो कहते थे कि एक व्यक्ति को जो हरि नाम कर रहा है तो उस व्यक्ति को 8 नियमों का पालन करना चाहिए। कितना? 8 नियमों का। तो अभी थोड़ा ध्यान से सुन लो ये 8 नियम क्या है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है। तो अभी वो क्या बता रहे देख लो। वो बताते हैं कि एक व्यक्ति जो जाप कर रहा है तो उसको गुरु साधु और शास्त्रों में पूरी निष्ठा होनी चाहिए। गुरु साधु शास्त्रों में पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पहला जो है। वो कहते थे कि जिस व्यक्ति की दीक्षा हुई है तो उस व्यक्ति को गुरु साधु शास्त्रों में पूरी निष्ठा होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि एक भक्तों को सिर्फ भक्तों का ही संग करना चाहिए और इस प्रकार जो है भक्तों के साथ ही जो है जाप करना चाहिए। तो भक्तों का ही संग करना चाहिए, भक्तों के साथ बैठ के जाप करना चाहिए, तो उस जाप में हमें और शक्ति मिल सकती है। फिर आगे वो बताते हैं कि अपना जो भजन है, श्रवण और कीर्तन, कृष्ण कथा, ये जो है श्रवण कीर्तन जो कृष्ण कथा है ये कृष्ण भक्तों से ही श्रवण करना चाहिए, कृष्ण भक्तों से। जैसे वृंदावन में बहुत बार भागवत कथा बहुत सारे होते रहती है, तो हमारे अंदर भी लोगों के अंदर एक ऐसे ही होता है, चलो अभी इस व्यक्ति का भागवत चल रहा है, उसका चल रहा है, उस तो ये भी एक प्रकार के हमारे अंदर क्या होता है कि इधर उधर हम लोग जाते रहते हैं। लेकिन यहां वो बता रहे कि जो भगवान के जो कृष्ण भक्त है, जो उनके द्वारा जो बताए गए जो है कृष्ण कथा है, उनका ही श्रवण करना चाहिए। फिर आगे वो बताते हैं कि ये आगे ऊपर के जो 4 नियम है उसके अलावा वो कहते हैं कि हमें अगर अपनी अनर्थ निवृत्ति, हमारे अंदर जो अनर्थों का नाश करना है, तो हमारी जो साधना है, तो जो हमारा जो भजन है वो क्या होना चाहिए, वो आगे नीचे बता रहे। अगर हमें ये अनर्थों का इस अपने हृदय से निकलना है तो आगे वो बताते हैं कि भगवान का जाप करते ध्यान, बहुत बार हम लोग जाप करने के लिए बैठते हैं तो एक पीछे पी लो नीचे पी लो, सर के ऊपर नहीं लेते, तो बस उसमें हमारा पता नहीं जाप होता है या नींद होता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन एक व्यक्ति को जाप वो बताते किस प्रकार जाप करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो कोई व्यक्ति सो नहीं जाता है, ध्यान से गाड़ी चलाता है, तो जाप भी वो बताते हैं कि एक व्यक्ति को ध्यान पूर्वक जाप करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जब भी हम जाप करते हैं हमारे रुचि के अनुसार, हमारा भगवान का जो संबंध है उस रुचि के अनुसार, जैसे छोटा बच्चा है उसको आप नहीं कह सकते कि 10 माला करो 16 माला करो, उसको कहो 1 माला करो बड़ी बात है, आगे धीरे धीरे उसको कह सकते 2 माला करो। तो एक बच्चे से आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि चलो 16 माला करो, नहीं। तो हमारे रुचि के अनुसार, तो हमें ये पता करना है कि मुझे कितनी रुचि है हरि नाम में। तो अगर हमें ज्यादा रुचि आ रही है तो हम ज्यादा जाप कर सकते हैं। वो बताते कि एक व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार, यानी जो है भगवान का जो है हमारा संबंध है उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। फिर एक व्यक्ति को जो है भगवान नाम के प्रति ज्यादा रुचि होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें 4-3 ये दिए हैं एग्जाम्पल्स, वो है वैष्णव सेवा, नाम रुचि और जीवदया। जीवदया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। जीवदया का मतलब है प्रचार करना है। नामे रुचि, हमें तो पता नहीं क्या क्या खाने में रुचि होती है, देखते रहते कि आज किचन में अब क्या बन रहा है, पहले सुबह जाके देखते ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है, फीस्ट है या खिचड़ी है, दोपहर को क्या मिलने वाला है, तो मन उसी में भटकता रहता है। लेकिन वो बताते हैं कि हमें जाप में, जैसे हरिदास ठाकुर हम देखते हैं कि 3 लाख नाम जाप करते थे, वो 192 माला करते थे, उसके बाद में प्रसाद लेते थे। तो कम से कम 16 माला, यानी वो कहते हैं ना अंग्रेजी में टिप ऑफ द आइसबर्ग, जैसे एक समंदर में बड़े बड़े जो है वो पहाड़ी होते हैं, किसके, बर्फ के, तो जो है ऊपर इतना सा दिखाई देता है, बाकी पूरा नीचे होता है। तो 16 माला तो मैंने 192 माला में 16 माला तो कुछ भी नहीं है, अगर वो ऐसे देखा जाए तो 16 माला कुछ नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो कहा करते थे कि जो व्यक्ति कम से कम 100,000 माला जाप नहीं करता है वो व्यक्ति पतित है। पतित है उसका वो व्यक्ति जो भी भगवान को अर्पण करता है सेवा कोई भी प्रकार का भगवान, तो ये तो उस समय की बात है, अभी तो समय बदल गया है। प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला दिया, तो कहा करते थे कि वो व्यक्ति जो है ठाकुर जी उसकी कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करते। फिर आगे वो बताते हैं कि एक व्यक्ति को भाव भक्ति में जो है अगर एक व्यक्ति आगे जाप करता है तो भाव भक्ति में स्थित होकर उसके अंदर भगवान के प्रति एक रति निर्माण हो जाएगी, भगवान के प्रति जो सेवा की जो है रति निर्माण हो जाएगी। तो ये उनके जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस है। फिर आगे वो बताते हैं कि कृष्ण भगवान का दर्शन सिर्फ आंखों के द्वारा नहीं कानों के द्वारा, ये मत सोचना, वो बताते हैं कि कृष्ण का दर्शन आंखों से होगा। वो कहते थे कि कृष्ण का दर्शन अपने कानों से करना चाहिए, और ये किस प्रकार करना चाहिए, वैष्णव के द्वारा श्रवण करके। तो कृष्ण का दर्शन कानों से वैष्णव के द्वारा श्रवण करके करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जिस जगह कोई भी जगह हो वहां अगर हरि नाम या भगवान के बारे में चर्चा नहीं होती तो वो कोई तीर्थ नहीं है, वो जो है वो कहते हैं कि वो जगह तीर्थ स्थान नहीं है, वो एक श्मशान है। फिर आगे वो बताते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति करना है तो क्या है कि हमें जो हमारे जो महाजन है उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए। जैसे शास्त्रों में उल्लेख आता है कि हमें जो है महाजनों का जो है उनका जो है पद चिन्हों में चलना चाहिए। वो बताते हैं कि अगर हमें भगवत धाम जाना है तो महान महाजनों का जो है उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए। फिर आगे वो बताते हैं अगर एक व्यक्ति कोई भी स्थिति हो, वो कहते हैं कि हमारे अगर अपने जीवन में कितने भी बड़े दुख आ जाए, हमें भगवान का नाम श्रवण और उनका जो है श्रवण कीर्तन किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में अगर हम नहीं छोड़ेंगे, जैसे एक बंदर का बच्चा है, आप देखते कि उसकी माँ यहां से वहां जंप मारती रहती है, वो कभी भी अपनी माँ को नहीं छोड़ता है। तो उसी प्रकार वो बताते हैं कि हमें कितने भी कोई भी प्रकार का दुख हो कुछ भी हो, जैसे प्रभुपाद जी भी बताया करते थे अक्सर कि कुछ भी हो कितना भी दुख हो आप भक्ति छोड़ के मत जाना। जैसे यहां एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद जी के सर्वेंट थे, उनका नाम था शतधन्य उनका नाम था। तो एक बार प्रभुपाद जी को कह रहे थे, प्रभुपाद जी मैं उस समय के लिए बाहर जा रहा हूं, उनको कहीं पोस्ट ऑफिस जाना था। तो प्रभुपाद जी ने कुछ ध्यान से नहीं सुना, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं मत जाओ आप बहुत दुखी हो जाओगे, आपका जीवन पूरा दुख से भर जाएगा। कह रहे थे नहीं प्रभुपाद जी मैं थोड़े समय के लिए जा रहा हूं, प्रभुपाद जी ने कहा मैंने कहा नहीं जाना। तो वो बता रहे थे मैं बार बार प्रयास कर रहा था प्रभुपाद जी को बताने का, लेकिन वो कह रहे थे नहीं मत जाओ। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी भी कहा करते थे कितना भी दुख हो तो एक व्यक्ति को जो है यानी वैष्णवों का संग छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है रामानंद राय को उन्होंने जब भी पूछा था सबसे बड़ा दुख क्या है इस दुनिया में, सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वैष्णवों का संग न मिलना वो सबसे बड़ा दुख है, दुख के मध्य वो कहते कि कौन सा बड़ा दुख है। फिर आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो बताते थे कि कृष्ण भगवान जो है अगर एक व्यक्ति कृष्ण भगवान को कहते हैं कि ये भगवान मैं आपका हूं, जैसे रामायण में भी एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें राम भगवान ने यानी रावण को वध करने से पहले उन्होंने एक श्लोक कहा बहुत अच्छा श्लोक आता है, सकृत एव प्रपन्नो यस तव अस्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि व्रतम मम। तो राम भगवान ने कहा अभी इस वक्त कोई भी आके मेरा शरण लेता है, चाहे वो रावण हो कुंभकर्ण हो, मैं उसको जो है अभय दान देता हूं, राम भगवान ने घोषणा की थी। तो ये यहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं अगर एक व्यक्ति कहता है कि कृष्ण भगवान मैं आपका हूं, आपका ही मैं शरणागत हूं, तो बताते कि उस व्यक्ति का जीवन धन्य है, कृष्ण भगवान अवश्य उसकी कोई भी स्थिति में रक्षा कर लेंगे। फिर वो कहते हैं कि इन साधु कौन है। भौतिक जगत में आजकल ये समझ पाना बहुत इतना आसान नहीं है। अगर कहते अंग्रेजी में कहा होता है, अगर एक व्यक्ति को समझना है तो उसके साथ में रहो तो पता चलेगा वो व्यक्ति कैसा है। तो वो यहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि एक व्यक्ति जो निरंतर भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है वो व्यक्ति सच्चा संत है। एक व्यक्ति कौन सच्चा संत है, जो भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है। फिर आगे वो बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति अगर अपने गुरु महाराज के चरण का आश्रय लेता है तो ये हमें समझना चाहिए कि गुरु महाराज का आश्रय जो है सिर्फ दीक्षा के लिए नहीं लेना चाहिए। यहां वो बता रहे अगर एक व्यक्ति सच्चे निष्कपट भाव से अगर अपने गुरु का आश्रय लेता है तो एक व्यक्ति माया के मोह से, भय से और दुख से मुक्त हो सकता है। तो जैसे हम लोग प्रतिदिन गुरु पूजा गाते हैं तो उसका बहुत ही गहरा अर्थ होता है, तो हमें उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। वो बताते कि एक व्यक्ति माया से, भय से और दुख से जो है वो मुक्त हो सकता है। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं जैसे एक व्यक्ति अगर सिर्फ भगवान की भक्ति करने लगता है तो उसको जो भी आवश्यकता है उसकी भगवान उसको पूर्ति कर देते। जैसे अगर एक व्यक्ति डिफेंस में ज्वाइन हो जाता है उस दिन से उसका क्या हो जाता है, उसका तनख्वाह और उसका भोजन, उसका रहना, रूम सब कुछ वो लोग ही दे देते। तो हमें भी वो बताते हैं, यहां बता रहे कि एक व्यक्ति सिर्फ भक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है तो भगवान जो है एक व्यक्ति को जो भी उसको आवश्यक है वो उसको भगवान प्रदान कर सकते हैं। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे क्योंकि उनके समय भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे थे, ज्यादा करके लोग अपना पेट पूजा का ही वो कार्य करते थे। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो बता रहे थे अगर मैं एक भी व्यक्ति को भक्त बनाऊंगा तो मेरा भक्ति का कार्य, प्रचार कार्य ये जो है मैं सोचता हूं कि ये हो गया, सक्सेस हो गया, मुझे इसमें यश मिल गया। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती राधा कुंड में प्रभुपाद जी को बता रहे थे कि मेरे शिष्य लोग अपना अपना रूम लेने के लिए जो है वो अभी से झगड़ा कर रहे हैं। अभी मैं इस दुनिया में हूं, अभी भी लोग वो झगड़ा कर रहे हैं कि किसको कौन सा रूम मिलेगा। वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि इन जो है मंदिर का मार्बल निकाल के उसको बेच के इसका मैं किताब वितरण कर दूं, किताब छाप के। तो इसलिए उन्होंने प्रभुपाद जी को आदेश दिया था कि आपको आपके पास कभी भी धन आएगा तो आप किताब जो है छाप के किताब का वितरण करो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती हम देखते हैं वो बताया करते थे अगर एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन जाएगा तो हमारा जो प्रचार है वो मैं समझता हूं कि उसमें मुझे पूर्ण यश मिल गया। फिर वो आगे बताते थे कि इस भौतिक जगत में सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना। इस भौतिक जगत की आज कलयुग का सबसे बड़ा बीमारी लोगों का शॉपिंग। तो लोग ऐसे भी है जिनका एक घर भर गया, लोग नया घर खरीदते वो सामान रखने के लिए, लोगों के गैरेज से लेके घर के नीचे एक बेसमेंट होता है वो भी भर जाता है और वो घर वो भर गया फिर दूसरे घर में जाके रहते हैं। तो लोगों के अंदर वो बताते हैं कि सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है क्या इकट्ठा करना, सामान इकट्ठा करने की। लेकिन वो लोग कृष्ण भगवान के जो संबंधित है उसको कृष्ण भगवान के संबंधित ज्ञान है वो इकट्ठा करने के उनके अंदर कुछ जो है रस नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है वो बताते। तो वो बताते हैं कि एक भक्त जो है भगवान को सब जगह जो है वो भगवान को जो है भगवान का सानिध्य वो देख सकता है। लेकिन एक जो ये होता है जो एथिस्ट एक व्यक्ति जो है नास्तिक होता है वो कितना भी उसको कहीं भी भगवान को दिखाओ उसको भगवान नजर नहीं आएंगे। लेकिन एक भक्त को जो है वो भगवान जो है वो सब जगह नजर आते हैं। फिर वो आगे बताते हैं अगर जीवात्माएं अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे वो क्या बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, कर्मी बनेंगे और भौतिकवादी बनेंगे। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो ज्ञानी, कर्मी और भौतिक भोगवादी बनेंगे और इस प्रकार इस भौतिक जगत में जो है दुख भोगते रहेंगे। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो इस प्रकार वो बताते हैं कि एक भक्तों को क्या करना चाहिए, निरंतर हरिनाम करते रहना चाहिए ताकि हमें भौतिक जो है संग हमारा कम हो। फिर वो आगे बताते हैं कि अगर हम बिना किसी अपराध का हरिनाम ये करेंगे, भगवान का लेंगे, हरि नाम लेंगे, अगर किसी बिना अपराध का, तो बताया जाता है कि इस प्रकार क्या होगा कि निरंतर जाप करते रहने से कि हमारे जितने भी अपराध है उन अपराधों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो बताते कि निरंतर हमें जाप करते रहना चाहिए। फिर आगे वो बताते हैं कि वो इस भौतिक जगत में हमें हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, हर जन्म में हमें माता पिता मिलेंगे, कोई भी जन्म हो, मनुष्य जन्म है। लेकिन वो बताते हैं कि एक मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें हम यानी आध्यात्मिक ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, जो जन्म जन्म में माता पिता प्राप्त करेंगे, लेकिन एक मनुष्य जन्म ही जो है हम जो है ये अच्छे यानी जैसे धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, इसका यहां वो बता रहे कि मनुष्य जीवन में हम अच्छे जो है यानी चीजों को जो है वो समझ सकते हैं, भक्ति पूर्वक जो है जो भी बातों को हम वो समझ सकते हैं, और हमारा जो कर्म चक्र है, हमारा जो संसार चक्र है, इसको हम तोड़ सकते हैं। फिर वो आगे बताते हैं कि मैं मेरे जितने भी दुश्मन है, अगर आप देखेंगे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके समय भी लोगों ने उनको मारने के लिए पुलिस को 25,000, उस समय 25,000 यानी आज का करोड़ों, 1920 की बात है, अभी 2020 होने वाला है। तो वो कहते थे कि मैं मेरे दुश्मनों का भलाई चाहता हूं, वो कहते हैं कि मैं मेरे दुश्मनों का भलाई चाहता हूं, हाँ मेरा कोई भी व्यक्ति मेरे पर प्रति कितना भी दोष न करे। जैसे जीसस क्राइस्ट को किसने कहा था, अगर एक व्यक्ति आपके एक गाल पर मार दे तो आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरा गाल दे दूंगा उसको। तो यहां ये बता रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कि मैं कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ कितना भी अगर वो दुश्मनी ये न करे, जैसे युधिष्ठिर महाराज को कहा जाता है, उनको कहा जाता है अजात शत्रुवत, यानी उनका दुश्मन पैदा हुआ ही नहीं। यानी यहां भी हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके अंदर किसी के प्रति कोई कपट ये नहीं था। फिर वो आगे बताते हैं कि जैसे हमें परम सत्य की चीज यानी परम सत्य के बारे में हमें पता चलता है, तो हमें कोई भी समय हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बताते थे कि 50 साल के बाद में किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि कल मैं जीऊंगा, अभी मेरा घर को जो है फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड प्लस वन कर देते हैं। अब वो यहां वे बता रहे कि एक व्यक्ति को जैसे पता चलता है कि मेरा भगवान का संबंध क्या है, तो एक व्यक्ति को भौतिक जगत में समय वो व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए इंद्र तृप्ति में, लेकिन एक व्यक्ति को अपना समय भक्ति में जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आगे उन्होंने और एक साधु की यानी परिभाषा दी है, वो बताते सच्चा साधु क्या कौन है। फिर वो बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के जो है स्तुति करने में लगे हैं वो साधु है, फिर जो भगवान के सेवा में लगे हैं वो साधु है, फिर वो बताते कि जीवन में एक व्यक्ति हर एक कार्य जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है वो साधु है, फिर एक व्यक्ति जिसका कोई कार्य नहीं सिर्फ कृष्ण भगवान का सेवा करना है वो है साधु है। यहां चार उन्होंने चीज बताया कौन साधु है। फिर वो बताते हैं कि स्वयं कृष्ण भगवान जो है अपने प्रति भक्ति सिखाने के लिए कृष्ण भगवान जो है एक गुरु के रूप में कृष्ण भगवान जो इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे जो गुरु है वो भगवान के प्रतिनिधि है। फिर वो आगे बताते हैं कि सिर्फ कृष्ण एकले ईश्वर कृष्ण, सिर्फ कृष्ण भगवान जो है वो भोगता है, सिर्फ एक कृष्ण भगवान जो है वो भोगता है, और इस भौतिक जगत में हमें मालूम होना चाहिए बाकी सब उनके दास है। फिर आगे वो बताते हैं कि इस भौतिक जगत में हम लोग आए हैं, मनुष्य जन्म हमें मिला है, लेकिन इस मनुष्य जन्म में हमें वो बताते हैं कि हमें बिल्डिंग बनाने वाला मोची चमार दर्जी ये कुछ कार्य करने का कुछ मतलब नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का जो है उनका समाचार जो है उसका प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा जार देके तार को कृष्ण उपदेश, वो कहते थे कि हमें इस भौतिक जगत में भौतिक बंधन के कार्यों में कार्य लगना नहीं चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी 1922 में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती को मिलने के लिए गए थे तो उस वक्त प्रभुपाद जी ने कहा रहे हमारा देश तो अभी गुलाम है, अभी हम लोग आजाद नहीं है, हम लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये दुनियादारी ये पॉलिटिक्स ये चलता रहेगा, लेकिन हमें अभी ये मौका मिला है भक्ति करने का, ये तो निकल जाएगा। आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने गांधी जी को भी जो है स्वतंत्र के पश्चात तुरंत प्रयास किया, प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी ये पॉलिटिक्स छोड़ दो, अभी आप भक्त बन जाओ फुल टाइम। तो लेकिन गांधी जी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो कहा करते थे कि इस भौतिक जगत में हमारा जीवन थोड़ा समय का है, तो कहते थे आगे बताते हैं कि हमारा जीवन छोटा सा है और अगर हमने भक्ति की है तो हमारे सर में एक सरताज होगा भक्ति का और इस प्रकार जो है हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। फिर वो आगे कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी बीमारी है, अगर उस बीमारी में अगर हम हरि भजन करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर हम बीमार भी है अगर उस बीमारी में भी अगर हम हरि भजन करते हैं तो उससे बढ़कर कोई फिजिकल फिटनेस नहीं है, वो बोलते। फिर वो आगे बताते हैं कि एक व्यक्ति जब तक इस भौतिक जगत में तर्कवाद तर्को प्रतिष्ठा आश्रितयो भिन्नम, तो इस भौतिक जगत में जब तक लोग तर्क में लगे रहेंगे, बहुत बार हमें लोग मिलते हैं ट्रेन में वगैरह आते जाते वो अपना तर्क लगाते रहते हैं, ऐसे क्यों हुआ ऐसे क्यों हुआ कृष्ण ने ऐसे क्यों किया। वो बताते हैं कि जब तक एक व्यक्ति तर्क में लगा रहेगा कि उस व्यक्ति को जो है आध्यात्मिक जो है ज्ञान या उसको जो है आध्यात्मिक में कभी उसको रुचि नहीं आएगी, वो तर्क में ही उसका जिंदगी खत्म हो जाएगा। फिर वो आगे बताते हैं कि मनुष्य समाज के लिए जो सबसे अच्छा जो मार्ग है वो है ये भवबंधन से अगर अगर हमें निकलना है, अगर भगवत धाम भगवत भगवान का अपना संबंध जोड़ना है तो हमें एक व्यक्ति है उनका अनुसरण करना उनके पद चिन्हों में चलना है, वो है हमारे गुरु। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि आप मेरे सिर्फ धोती पकड़ के रहना। एक बार प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर दे रहे थे तो प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जब तक एक व्यक्ति 100% शुद्ध नहीं होता है भगवत धाम नहीं जा सकता है। सब लोगों के मुंडी एकदम नीचे थे, कोई ऊपर ही नहीं देख रहा था। तो प्रभुपाद जी ने देखा रे कोई कैंडिडेट है ही नहीं, तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है 90% फिर भी सबके नीचे है सर। फिर कहा प्रभुपाद जी ने 80% फिर भी सबके सर नीचे थे। फिर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है 75% लास्ट। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान का जो भगवत धाम का जो पीछे का दरवाजा है उसकी मेरे पे एक चावी है डुप्लीकेट चावी, तो मैं वहां से आपको अंदर ले लूंगा। जैसे मुझे याद है हम बचपन में स्कूल जाते थे तो हम लोग फुटबॉल खेलते थे, तो जब भी वर्षा होती थी तो पूरे कपड़े गंदे हो जाते थे, तो जैसे घर आते थे तो पिताजी सामने बैठे रहते थे, तो हम लोग पिछले दरवाजे से अंदर घुस जाते थे घर के अंदर, फिर स्नान करके बिल्कुल ऐसे दिखाते थे कि हम बिल्कुल गंदे हुए ही नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि चलो कम से कम 75% भी एक व्यक्ति ये हो जाएगा क्लीन, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम आपको भगवत धाम ले जाएंगे। तो आगे वो बताते हैं कि सबसे बड़ा जो धर्म है जीव का वो है भगवान की भक्ति, और इतना ही करेंगे तो बहुत है। आगे वो बताते हैं कि जो अभी जो आधुनिक जगत है कलयुग है तो इसमें लोग जो है अपप्रचार करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, धर्म के नाम पर लोग जो है अपप्रचार करने वाले। जैसे आप लोग जानते हैं कि 13 अपसंप्रदाय है, आजकल 14 हो गया। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बाद में जो है वृंदावन में भी है ये लोग, अभी हम आपको नाम नहीं बताएंगे, बहुत सारे अपसंप्रदाय वाले वृंदावन में भी घूमते हैं, वो बस सखी या अलग अलग प्रकार के सखी भेकी गौरांग नगरी ऐसे 14 लिस्ट है। तो वो कहते थे कलयुग में अपसंप्रदाय के नाम से प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, इनके बातों में नहीं आना चाहिए। फिर वो आगे बताते कि हमारा जीवन का एक लक्ष्य, परम लक्ष्य क्या होना चाहिए कि रूप गोस्वामी जो है उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रूप गोस्वामी वो चैतन्य महाप्रभु की जो है इच्छा उसकी पूर्ति कर रहे, तो हमें रूपानुगा बनने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे वो बताते हैं कि भौतिक जगत जो है ये एक ऐसा बाजार है जहां लोग ग्राम में कथा करते रहते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर हम ग्राम में कथा करते रहेंगे तो हम अपना भगवत धाम जाने का रास्ता भूल जाएंगे। अगर हम भौतिक जगत में ग्राम में कथा करते रहेंगे, मुझे याद है बचपन में हमारे एक पड़ोसी थे, एक बार वो अपनी पत्नी के साथ मंडी गए थे स्कूटर लेके, तो वो स्कूटर पर बैठ गए, उनको लगा पत्नी भी बैठ गई, और लेकिन पत्नी किसी के साथ बात कर रही थी, तो घर आए तो बोला पत्नी को उतरो, देखा पत्नी है ही नहीं पीछे, बेचारे बिल्कुल डर गए कहां गिर गई पत्नी। फिर 3 किलोमीटर वहां मार्केट था, फिर गए वहां, देखा मंडी में सब जगह देखा पत्नी है नहीं, पुलिस स्टेशन में पूछा, अरे कोई, उन्होंने कहा नहीं यहां तो कोई रिपोर्ट नहीं आया। बड़े दुखी होकर घर आए तो पत्नी ने कहा, अरे क्या आपको, मैं चिल्ला रही थी फिर भी आप स्कूटर में बैठ के चले गए। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ग्राम में कथा में अगर लग जाएंगे तो हम भगवत धाम जाना जो है वो भूल जाएंगे। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं कि एक व्यक्ति को जोर से हरि नाम करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बताते हैं कि अगर हम जोर से हरि नाम करेंगे तो हमारे अंदर जितने भी पाप बैठे हैं वो सब पाप भाग जाएंगे। वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो अनर्थ, और उन्होंने लिखा है पेस्ट, पेस्ट का मतलब कीड़े, तो हमारे अंदर जितने भी अनर्थ है अगर हम जोर से हरि नाम करेंगे तो हमारे अंदर जितने भी पाप हैं वो सब जो है वो भाग जाएंगे। फिर आगे वो बताते थे कि इस भौतिक जगत में किसी भी प्रकार की शांति या सुख नहीं है, इस भौतिक जगत के जीवन में कोई शांति या सुख नहीं है, और एक व्यक्ति को जो है हर एक स्थिति में जो है दुख भुगतना पड़ता है। तो ये भौतिक जगत की वो बताते एक सच्चाई है। फिर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी समय हो रहा है तो और एक 4-5 चीजों को बता देते। वो बताते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर हम सिर्फ शरीर का देखभाल करेंगे, अगर इस शरीर को ही सजाते रहेंगे, वो बताते हैं कि अगर हम सिर्फ शरीर को सजाते रहेंगे, अगर शरीर को ही देखभाल करते रहेंगे तो इसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा निकल जाएगी, उस आत्मा का कुछ भला नहीं होगा। जैसे प्रभुपाद जी एक बुढ़िया जो पिंजरे का, सोने का पिंजरे का वो ये करती थी, सफाई करती थी, लेकिन वो चिड़िया को खिलाना भूल गई। एक बार प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते, एक गांव में कोई एक सेठ जी था बनिया, वो नदी में नहाने के लिए गया था, बेचारा पैर फिसल गया तो नदी में डूब ही रहा था, तो सब लोग चिल्ला रहे थे, अरे बनिया जी डूब रहे, कोई बचाओ बचाओ। उन्होंने कोट पहन के रखा था, कोई एक हिम्मत वाला गया उसको बचाने के लिए, तो उसका कोट खींच रहा था क्योंकि बनिया इतने बड़े थे, तो बेचारे बनिया डूब गए, उसका कोट लेके आ गया। तो लोगों ने कहा, अरे क्या मूर्ख है, कोट को बचाया, बनिया को बचाता तो कितना अच्छा। तो यहां वो बता रहे कि इस शरीर को अगर हम इसके साथ ही अगर इसी को सजाते रहेंगे तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो चली जाएगी। तो आगे वो बताते हैं कि ये शब्द जो भक्ति है, जो भक्ति का जो शब्द है, ये सिर्फ कृष्ण भगवान को लागू होता है, तो हमें ये चीज याद रखना चाहिए कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो ये कोई भक्ति नहीं है। लोगों को बताना चाहिए भक्ति का मतलब है सिर्फ कृष्ण भगवान को लागू होता है। जैसे आज भारत में बहुत सारे जयंती होता है, अभी नाम नहीं हम लेंगे जयंती, तो ये जयंती सिर्फ भगवान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। शब्द जयंती शब्द जो है ये भगवान के उत्सवों को ही वो लागू होता है। आप कहीं भी जाएंगे तो आप बता सकते हैं लोगों को। तो बताते हैं कि ये शब्द जो है सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए तो इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आगे वो बताते हैं कि मैं लोगों को डर के मैं सच्चाई को प्रकट नहीं करूंगा, ऐसे नहीं कि लोगों को सच्चाई अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं प्रचार नहीं करूंगा। तो शास्त्र में उल्लेख आता है सब जो सच्चाई है उसको हमें दोहराना चाहिए, सत्यम ते ब्रूयात। तो यहां वो बताते हैं कि भौतिक जगत में लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको बस कहो तुम कुछ भी करो लेकिन भक्ति करो, ऐसे नहीं। तो हम देखते हैं जैसे प्रभुपाद जी गए विदेश में तो काफी लोग प्रभुपाद जी को कहा करते थे, अरे प्रभुपाद जी आपको तो पैंट कोट पैंट पहनना पड़ेगा, विदेशी लोग जैसे खाते हैं वैसे फोर्क और स्पून से खाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं वहां कुछ सीखने नहीं जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं वहां सिखाने जा रहा हूं, सीखने नहीं जा रहा हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो इस प्रकार यहां वो बता रहे कि मैं लोगों को डर के जो सच्चाई है उसको दोहराऊंगा, ऐसे नहीं, जो सच्चाई है मैं उसको बताऊंगा। एक बार बताया था कि उस समय जो सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी भी बनाया था, वो आके उनके पास कहते थे आप इतने लोगों को भर्ती कर रहे भक्त बना रहे इनको आर्मी में भर्ती करा दो हम देश को आजाद करेंगे। लेकिन वो कहते थे नहीं 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 ये ऐसे साधु है कुछ काम के नहीं, थोड़ा इनको भजन करने दो। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग जो है उनके अपने अपने विचारधारा से लोग चलते हैं, लेकिन हमें जो हमारे जो आचार्य है उनके विचारों में उनके जो विचार है उनके ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए। तो आगे वो बताते हैं कि इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे हम लोग फिलंथ्रोपिक वर्क कहते हैं, समाज सेवा। वो बताते कि भौतिक जगत में कोई भी कितने भी बड़े प्रकार की बड़ी समाज सेवा करो वो कुछ काम की नहीं है। इस भौतिक जगत में आप देखते कि भारत में महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इन लोगों को क्या मिला इतना बढ़िया समाज सेवा करके। वो कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कितनी भी बढ़िया अगर समाज सेवा करो लेकिन अगर आप लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं देते तो कोई समाज सेवा नहीं, कितने भी आप लाखों में हॉस्पिटल बनाओ उसका कोई फायदा है नहीं। आगे वो बताते हैं कि आप जो है भक्ति को कभी भी मत त्यागना, अपने जीवन में कितने भी दुख आ जाए, कोई लोग आपके ऊपर कितना भी इंसल्ट करे, थूक दे, आपके जो है प्रति कितना भी आपको जो है वो धमकाए, लेकिन आप जो है दुखी मत होना, जो है कि आप कभी भी जो है भक्ति को मत छोड़ना। वो बता दे कि हमें श्रवण कीर्तन अपने इसमें जारी रखना चाहिए। जैसे अवंती ब्राह्मण के बारे में कृष्ण भगवान बताते हैं भागवतम में, तो एक व्यक्ति को कोई भी स्थिति में क्या करना चाहिए, अपना श्रवण कीर्तन को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। फिर आगे वो बताते हैं कि जब भी हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो जितने भी श्रवण अनर्थ है वो निकल जाएंगे। फिर जैसे अनर्थ निकल जाते हैं तो हमारे हृदय के अंदर क्या होगा कि कृष्ण भगवान का रूप, उनके गुण और उनकी लीलाएं वो अपने आप अपने हृदय में वो प्रकट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें अलग से प्रयास करने का जरूरी नहीं, वो कहते हैं कि इसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। तो कहते हैं कि सिर्फ आप जो है निरंतर भगवान का जाप करते रहो तो क्या होगा, भगवान का रूप गुण लीला वो अपने हृदय में प्रकट हो जाएंगे, इसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरी नहीं। अभी लास्ट एक बता देते, वो बताते हैं कि जो संघ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बताते हैं कि ये जो संघ है खास करके मनुष्य जन्म में, ये अगर हम संघ में संगा संजायते काम, एक भगवदगीता में श्लोक आता है कि यहां वो बता रहे कि ये जो संघ है इस संघ से ही जो है भगवान भक्तों के संघ से ही जो है हमें जो है भगवत धाम की वो प्राप्ति हो सकती है। अगर वो बताते हैं अगर हम अभक्तों का संघ करेंगे तो भगवत जो है धाम जो है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो बताते हैं कि भगवान के भक्तों का संग करने से हमें भौतिक भी जो है प्रगति भी हो सकती है और आध्यात्मिक भी जो है प्रगति हो सकती है। तो हमें निरंतर ये प्रयास रखना चाहिए कि भक्तों का संग करते रहे, तो इस प्रकार हमें इसका लाभ मिलेगा। फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका इंस्ट्रक्शन है, वो बताते हैं अगर एक व्यक्ति हजारों में किताबें अगर पढ़ता रहेगा तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। तो लोगों के अंदर थोड़ी बीमारी होती है, कोई भी नया किताब आ गया खरीद लो अपने कपाट में रख दो, पढ़ते नहीं उसको, सिर्फ इकट्ठा करते जाते हैं। तो यहां वो क्या बता रहे कि एक व्यक्ति जब तक भगवान को सेवा अर्पण नहीं करता है, अगर वो सिर्फ ढोंग करता है, किताब पढ़ने का कुछ लाभ नहीं है। तो एक व्यक्ति को जो है अपने क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो तभी क्या हो सकता है उसको जो है उसका लाभ मिलता है। बोलो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात की। हाँ, हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न है, टीका है तो कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को हमने जो भी शब्द कहे हैं, तो एक किताब है जिसका नाम है अमृतवाणी। तो उसमें ये पहले जो है 108 उनके अमृतवाणियों का उपदेश दिया है, उसमें से आप लोगों को कुछ हमने बताने का प्रयास किया। हरे कृष्णा। तो आज 12:30 बजे जो है पुष्पाभिषेक पुष्पांजलि होगा, आप लोग आ सकते हैं। जैसे आप दवा देते तो उसके ऊपर क्या लगाया रहता है, शुगर। हाँ, आप भी ऐसे दे दो उसको। हाँ, सिंपल सिंपल है ना। आप भी एक डॉक्टर है, आपको भी पहले उसको, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती और एक उनका उपदेश है कि ला जाके लोगों की स्तुति करो, कहो आप आपसे बढ़कर कौन। और आप उनकी ऐसी स्तुति करो, वो कहेंगे अरे वाह, वो अपना कॉलर टाइट करेंगे, जब भक्त बनेंगे बोलेंगे अभी तुम भक्त है, यहां दंडवत करो अभी। पहले उनको थोड़ा अच्छे ये करो, बाद में को यहां चरण ये करना है, दंडवत करना है, यहां प्रणाम करना है। तो प्रभुपाद जी ने जो है पहले 16 माला 4 नियमों का नहीं बताया, जैसे उन्होंने दीक्षा वगैरह दे दिया तो उन्होंने कहा चलो अभी ये करना पड़ेगा, समझ रहे। हरे कृष्णा, जय हरि बोल। पाप निकल जाते हैं, बगल वाले भाग जाते हैं। अच्छा है, यानी वो अपने पाप को भगाने के लिए भाग जाते हैं। ग्रेट। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का और एक वाक्य है, वो कहते थे कि जो व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। हरे कृष्णा। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती आविर्भाव तिरो आविर्भाव महामहोत्सव की जय।